पृष्ठ संख्या 76। यह एक विद्रोह था अथवा क्रांति। वाज इट ए रिबेलियन और ए रिवॉल्यूशन? 20वीं शताब्दी का थाइपिंग आंदोलन से जुड़ा हुआ मुख्य विवाद यह है कि यह एक विद्रोह था या फिर एक क्रांति। चीन के विशेषज्ञ अपने पूर्व धारणाओं के कारण या फिर विद्रोह और क्रांति की सही परिभाषा का ज्ञान न होने के कारण इसका सही निष्कर्ष नहीं दे पाए हैं। थाइपिंग आंदोलन के आरंभ में पश्चिमी दुनिया इससे बहुत प्रभावित हुई थी। मार्क्स ने इसको एक भीषण क्रांति, फॉर्मिडेबल रिवॉल्यूशन का नाम दिया और भविष्यवाणी की कि इसके द्वारा संपूर्ण यूरोपीय इतिहास में परिवर्तन आएगा। लंदन के द टाइम्स ने इसे आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जन विद्रोह आंदोलनों में की संज्ञा दी। लेकिन जैसे जैसे इस पर पश्चिमी विद्वानों ने और अधिक शोध करना आरंभ किया, वैसे ही वह इसे क्रांति कम और केवल विद्रोह अधिक मानने लगे। बैरिंगटन मूअर जूनियर का यह विश्वास है कि थाइपिंग आंदोलन के द्वारा समाज के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, इसलिए इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। मार्क्सवादी कथन के अनुसार चाहे यह आंदोलन विफल रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसने चीन में सरकार और समाज दोनों को बदलने का जो अथक प्रयत्न किया था, इस उद्देश्य से यह क्रांति थी। विंसेंट सिह की नज़र में थाइपिंग समर्थकों द्वारा केवल ईसाई धर्म और पश्चिमी विचारों को अपनाना ही क्रांतिकारी था, लेकिन पूरे आंदोलन को क्रांतिकारी बताना तीन कारणों से उचित नहीं है। थाइपिंग नेता मूलभूत सामाजिक परिवर्तन लाने के स्थान पर केवल चीन के पिरामिड रूपी राजनीतिक ढांचे और सरकार के ऊपरी हिस्से को गिराना चाहते थे। थाइपिंग नेतृत्व ने स्वयं के उद्देश्यों को कृषक के साथ नहीं जोड़ा। उनकी भूमि प्रणाली बेमन से किया गया कार्य था जिसका भूस्वामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी भी कृषक नेता के अभाव में यह आंदोलन कृषक जागरूकता का परिचायक नहीं था। इस जटिल समस्या का जटिल हल सयोतंग ने दिया है, जिसके अनुसार इस आंदोलन के दो भाग थे। प्रथम भाग में थाइपिंग आंदोलन एक श्रमिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य छिंग शासन को समाप्त करके उसकी जगह एक आमूल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली नई राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना करना था। ए न्यू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट विथ ए रेडिकल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम। थाइपिंग नेताओं ने गैर समझौतावादी मूर्ति पूजक वाली जबरदस्त धार्मिक क्रांति का श्री गणेश किया, लेकिन यह थाइपिंग आंदोलन के पहले चरण की कहानी है, क्योंकि बाद में आंदोलन में गिरावट आ जाने के कारण यह कृषक विचारधारा को आगे ले जाने में असफल रहा। तंग के अनुसार दूसरे चरण में थाइपिंग आंदोलन एक आधुनिक क्रांति की बजाय परंपरागत कृषक बलवे से अधिक मिलता था। रिजेम्बल्ड मोर ए ट्रेडिशनल चाइनीज पीजेंट इंसुरेक्शन रिजेम्बल्ड मोर ए ट्रेडिशनल चाइनीज पीजेंट इंसरेक्शन देन ए मॉडर्न रिवॉल्यूशन। खुग छुवन सियाओ के अनुसार विद्रोह का अर्थ है स्थापित सरकार के विरुद्ध खुला सशस्त्र विद्रोह, ओपन आर्म्ड अपोजिशन टू द एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, जबकि क्रांति का उद्देश्य न केवल शासकों में परिवर्तन बल्कि सरकार के ढांचे तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों को भी बदलना होता है। एम्ड नॉट मेरली एट ए चेंज ऑफ रूलर्स बट एट एन अल्टरेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टूगेदर विद द प्रिंसिपल्स ऑन विच इट रेस्ट्स। इसी प्रकार मार्क्स के अनुसार भी परिवर्तन क्रांति का मुख्य आधार है। विद्रोह एक अचानक उठने वाली भावना है जिसके पीछे कोई एक विशेष कारण उस समय प्रमुख होता है, जबकि क्रांति की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी होती है और उग्र रूप धारण करने से पहले इसकी आग धीरे धीरे सुलगती है। विद्रोह से होने वाले परिवर्तन अधिक दिन तक नहीं टिक पाते। क्रांति से संपूर्ण सामाजिक ढांचे पर अमिट प्रभाव पड़ता है। विद्रोह अस्पष्ट बदलाव लाता है जो केवल सतह पर दिखाई देता है। क्रांति क्रांति मूलभूत परिवर्तन को व्यक्त करती है। विद्रोह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता, लेकिन क्रांति अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। यह जानने के लिए कि थाइपिंग आंदोलन विद्रोह था या क्रांति, निम्नलिखित तीन बातें ध्यान में रखनी होगी। एक, विचारधारा आइडियोलॉजी। दूसरा, सहभागिता पार्टिसिपेशन। तीसरा, परिणाम रिजल्ट। लेनिन के अनुसार बिना क्रांतिकारी सिद्धांत के कोई आंदोलन क्रांतिकारी नहीं हो सकता। विदाउट ए रिवोल्यूशनरी थ्योरी देयर कैन बी नो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। थाइपिंग के पास एक विशेष विचारधारा थी। थाइपिंग आंदोलन का उद्देश्य न केवल मांचू वंश को उखाड़ फेंकना था, बल्कि ईसाई धर्म पर आधारित नई सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था की स्थापना भी करना था। ईसाई धर्म से ही थाइपिंगों ने परलोक शास्त्र, सुधर्मवाद और समानतावाद को अपनाया। सामंतवाद को प्राप्त करने के लिए ही अलौकिक कोष सेक्रेट ट्रिजरी की स्थापना की गई, जिसमें सारी संपत्ति को रखा जाता था तथा राष्ट्रीय आय व सैनिकों की आय का यही एक स्रोत था। वैसे तो अगर उसे व्यवहारिक रूप दिया जाता तो थाइपिंगों की भूमि प्रणाली भी समानतावाद पर आधारित थी। थाइपिंगों का उद्देश्य सभी को भूमि खेती करने के लिए, सभी को भोजन खाने के लिए, सभी को वस्त्र पहनने के लिए, सभी को पैसा खर्च करने के लिए उपलब्ध करवाना था। लैंड फॉर ऑल टू टिल एंड फूड फॉर ऑल टू ईट, क्लॉथ्स फॉर ऑल टू वियर एंड मनी फॉर ऑल टू स्पेंड। वह हर प्रकार के शोषण और निजी व्यापार को भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर इस नीति को लागू न किया जा सका, तब थाइपिंगों ने भूमि कर भी वसूल करना आरंभ कर दिया। पृष्ठ संख्या 79। थाइपिंगों ने वेश्यावृत्ति, पैर ढालना फुट बाइंडिंग, शराब पीना, अफीम व तंबाकू का नशा करना जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगा दिया। थाइपिंगों द्वारा जनप्रसिद्ध लेखन विधि को लागू करने की कोशिश के महत्व को भी कम नहीं किया जा सकता। जैसा कि थानचुंग का कहना है कि जहां तक सहभागिता का सवाल है, यह एक जन आंदोलन था जिसमें अप्रकट कृषि शक्ति सोपान क्रमिक प्रणाली में संगठित थी। यह आंदोलन अधिकारी तंत्र, भूस्वामियों, सुदखोरों और साम्राज्यवाद के विरुद्ध शुरू किया गया था। थाइपिंग आंदोलन ने सामंतवादी समाज के ढांचे को तोड़ दिया। हुंग सियोच युवन द्वारा छिंग सम्राट की भर्त्सना तानाशाही राजतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप से खंडन था। हुंग ने कन्फ्यूशियन शास्त्रों की कड़ी आलोचना करते हुए सामंतवादी समाज के स्थान पर एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयत्न किया जिसमें सभी लोग समान हो। इस आंदोलन में क्रांतिकारी तत्वों की कोई कमी नहीं थी। लियोतानियन का मत है कि थाइपिंग आंदोलन, बक्सर आंदोलन 1911 की क्रांति तथा चतुर्थ मई आंदोलन के साथ मिलकर चीन की समाजवादी क्रांति की उस सफलता का हिस्सेदार है जिसने चीन की उत्पादक शक्तियों को एक उच्च स्तर पर पहुंचाएगा। इस आंदोलन ने ही बिखरे हुए जनसमूहों को एक स्थान और उद्देश्य से बांधकर सामाजिक एकता की भावना से अवगत करवाया। सामंतवादी व्यवस्था और छिंग वंश के पतन की गति को तीव्र करने का श्रेय भी इसी आंदोलन को जाता है। साथ ही इसने साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन पर शासन करने के स्वप्न को भी भंग कर दिया और भविष्य के लिए जन आंदोलनों की शुरुआत का प्रेरणा स्रोत बना। जॉ शेजनो के अनुसार इस आंदोलन में तीन मुख्य मुद्दे थे, राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक। यह राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि इसने छिंग वंश का विरोध किया जो विदेशी और बर्बर था। यह धार्मिक आंदोलन था क्योंकि यह कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म का सख्त विरोधी था तथा उनके स्थान पर इसने ईसाई धर्म को अपनाया। यह सामाजिक आंदोलन भी था क्योंकि इसने कृषि संबंधों को एक पुनर्गठन का कार्यक्रम व्यक्त करके न केवल सामंतवाद की जड़ों को खोखला किया, बल्कि स्त्रियों के उद्धार की भी बात की।